उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में आपको हमारा प्रेम भरा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
श्रोताओ,
इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से अय्यूब नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है अय्यूब की पीड़ाएं और समस्याएं। हमें विश्वास है श्रोताओ कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में शामिल हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जीवन तुम पर अर्पण कर दे,
जगदाता।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि अय्यूब अपनी शिकायत को परमेश्वर के सम्मुख में रख रहा है और उसके तीन मित्र उसके पास में बैठे हुए हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एलीपज का पहला वाद अनुभव की वाणी है। तो आइए इससे पहले हम प्रार्थना करें और अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम अय्यूब की पुस्तक में से अध्ययन करते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि अय्यूब के जीवन से आप हम सबसे बोले और बातचीत करें, हमें सिखाएं और समझाएं। विशेष प्रार्थना है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, अय्यूब के पुस्तक के द्वारा वे भी अपने जीवन में सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें, शांति और आशीष को प्राप्त कर सकें, ऐसा आप कृपा दृष्टि प्रदान करें। इस वक्त फिर से हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का विषय है एलीपज का पहला वाद और अनुभव की वाणी। अय्यूब के मित्रों में से एलीपज भी एक उसका मित्र है। अय्यूब के मित्र 7 दिन तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। वे केवल अपना सिर हिलाते थे जैसे कि वह कह रहे हो अंत में पकड़े ही गए। ऐसा प्रतीत होता है कि अय्यूब कष्ट सहन कर सकता था, परंतु अपने मित्रों का यह स्वभाव उसे सहन नहीं हुआ। अतः वह कहना आरंभ करता है, शिकायत करता है, रोता है। उसकी निराशा अंधकार से पूर्ण थी और उसके पास अपने कष्टों का उत्तर ही नहीं था। अब उसके मित्र प्रति उत्तर में कुछ कहते हैं। सबसे पहले एलीपज, फिर विलदाद और अंत में सोपर। इन मित्रों के नाम ही उनका चित्रण प्रस्तुत करते हैं। एलीपज का अर्थ है परमेश्वर ही शक्ति है या परमेश्वर शुद्ध सोना है। विलदत का अर्थ है कहल का पुत्र, प्रसंगवश वह ओछा भी है। वह अपने आचार विचार में गंवारू, मुंहफट और निर्दयी है। और सोपर का अर्थ है गौराया, वह चाहकता है, उसकी जीभ घटिया है और वह अय्यूब पर भयंकर लाछन लगाता है। उनका वार्तालाप वास्तव में वाद विवाद प्रतियोगिता था। अय्यूब के मित्र उस पर दोष लगाते हैं और वह अपना बचाव करता है। इसे हम बौद्धिक खेल भी कहते हैं। उस युग में ऐसा होना आम बात थी। आज मनुष्य खेल देखने जाता है जहां शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन होता है। उस युग में बौद्धिक प्रतियोगिता होती थी। मेरे विचार में उनके वाद विवाद के समय भीड़ एकत्र हो गई होगी कि देखें क्या हो रहा है। हम सोचते हैं कि उस युग के लोग सभ्य नहीं थे, परंतु वे बौद्धिक बातों पर बल देते थे। हम अपने आप को बुद्धिमान और विकसित मानते हैं, परंतु हम केवल शारीरिक क्षमता पर ही ध्यान देते हैं। हम इन प्राचीन लोगों से अधिक विकसित नहीं हैं, जैसा हम सोचते हैं। अय्यूब ने शिकायत करना आरंभ किया। वह ऐसी घोर निराशा में था कि मनुष्य शायद ही कभी ऐसा निराश हुआ हो। शैतान ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसके पास कुछ भी नहीं था, न ही आश्रय के लिए कोई स्थान। इस समय परमेश्वर भी उससे बहुत बहुत दूर प्रतीत हो रहा था। एलीपज पहला मित्र था जो अपने विचार को प्रकट करता है। वह अनुभव की बात करता है। वह एक असाधारण मनुष्य था और वह एक अद्भुत एवं रहस्यमय अनुभव सुनाता है। वह जो कहना चाहता है उसकी विषय वस्तु पद 8 है। मेरे देखने में तो उसकी हर एक बात इसी पर निर्भर है। उसे अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए हैं और उसने वे बातें सुनी हैं जो किसी ने कभी नहीं सुनी। आइए हम पढ़ें अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 और 2 पद में। तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? मेरे प्रियो, वह कूटनीति अपनाता है परंतु वह झूठी दीनता का प्रदर्शन करता है। यदि मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तब वह कहता है, आपको बुरा लगे तो लगे, परंतु मैं तो कहूंगा। आगे लिखा है अय्यूब 4:3-5 में, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। ध्यान दें, वह अय्यूब से कहता है, जब तू समृद्ध था, हृष्ट पुष्ट था, तब तू सबके लिए बल का माध्यम था। तू उन्हें परामर्श देता था और उनका मार्गदर्शन भी करता था। तू जानता था कि कष्टों में फंसे हुए लोगों को कैसे उभारे। अब तुझे कुछ हो गया तो तू बिलक गया है। अब तो तू मात्र एक कठपुतली सा रह गया है। अब तू केवल मिट्टी का शेर है। तू तो कभी सच्चा था ही नहीं। जो परामर्श तू दूसरों को देता था, क्या अब तू उन पर भी नहीं चल सकता? मैं कहना चाहता हूं कि आज हम में से अधिकांश की यही समस्या है। यह बड़ी रोचक बात है कि हम किसी को बता सकते हैं कि समस्या में घिरा हुआ क्या करे। यह 2 मनोवैज्ञानिकों के व्यंग चित्र को दिखाता है। वे एक दिन एक दूसरे से मिले तो एक ने कहा, तुम अच्छे हो, मैं कैसा हूं? हम सदा ही दूसरों को देखते हैं और उसका हाल उसे सुनाते हैं। एलीपस कहता है कि अय्यूब इस काम में दक्ष है। वह बड़े ही कटाक्ष से कहता है, अब विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। तब हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब 4:6 में, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? ध्यान दीजिए, क्या तेरा परामर्श तेरे लिए अच्छा नहीं? उससे अन्यों को तो लाभ हुआ, तुझे भी होना चाहिए। अब एलीपज बड़ी दीनता से अय्यूब पर लाछन लगाता है। हम देखेंगे कि अय्यूब के अन्य 2 मित्र मुंहफट और अभद्र हैं, विशेष करके सोपर। अय्यूब 4:7 में हम पढ़ते हैं, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं? वह अय्यूब से कहता है कि उसमें कहीं न कहीं कोई दोष अवश्य है, अन्यथा उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसके जीवन में गंभीर अपराध हैं, वह उसे छिपा रहा है, यह उसका कहना था। वह अय्यूब पर लाछन लगा रहा था जो सच नहीं था। मैं इस पद का संदर्भ आज भी सुनता हूं और इसका सही अर्थ नहीं निकाला जाता है। मेरे मित्रों, हम तो जानते हैं कि अय्यूब पर लगाया गया यह दोष गलत है, क्योंकि हमें पुस्तक के आरंभ में स्वर्ग का दृश्य दिखाया गया है। अतः हम अय्यूब और उसके चरित्र को समझते हैं। उसके मित्र अभागे ढाड़स बंधाने वाले थे, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं समझते थे। वे तो अय्यूब को भी नहीं समझते थे, वे स्वयं को भी नहीं समझते थे। आज अनेक जन आत्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि वे इस योग्य नहीं हैं। स्पष्ट कहूं तो यह एक कारण है कि मैं किसी को परामर्श देने में संकोच करता हूं। मेरा अपना विचार यह है कि यदि कोई परमेश्वर की संतान है, तो जब तक विषय तकनीकी, बाइबल अध्ययन या शारीरिक विषय ना हो, तब तक परमेश्वर और उसकी आत्मा को ही समाधान खोजने दिया जाए तो अच्छा है। हमें किसी तीसरे मनुष्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंततः हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति में एक मध्यस्थ है। अय्यूब एक मध्यस्थ की पुकार कर रहा है, और हमारे पास एक मध्यस्थ पहले से ही है। 1 तीमुथियुस की पत्री 2:5 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर एक है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच भी एक ही बिचवई अर्थात मध्यस्थ है, मसीह यीशु, जो मनुष्य है। वही है जिसके पास विश्वासियों को जाना चाहिए। अपेक्षा इसके कि वे किसी पास्टर या किसी मनोवैज्ञानिक के पास में जाएं और अपनी समस्याओं को सुनाएं। यदि समस्या शारीरिक है तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, परंतु साथ ही परमेश्वर को भी पुकारें। जिस प्रकार एलीपज अपने अनुभव से कह रहा था, उसी प्रकार मैं भी अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि परमेश्वर हमारे शारीरिक और आत्मिक दशा के संबंध में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। यह देखना वास्तव में अनोखा है कि अय्यूब की कहानी पूरी होने से पूर्व ही परमेश्वर उसके साथ किस रीति से व्यवहार करता है। एलीपज अय्यूब के लिए अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुआ। हम आगे पढ़ते हैं अय्यूब 4 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, मेरे देखने में तो पाप जो जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, एलीपज एक ऊंचाई से कह रहा था, वह अय्यूब को तुच्छ समझ रहा था। वह कह रहा था कि उसके जीवन में कुछ तो है जो वह छिपा रहा था। उसकी समझ में अय्यूब ने जो बोया है वही वह काट रहा है। अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, वे परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। जी हाँ, वह गलत था। परमेश्वर अपने संतान की ताड़ना तो करता है, परंतु उसे नष्ट नहीं करता। एलीपज हमसे अधिकांश जनों के समान था जो राय देना जानते हैं। हम किसी को अति सुंदर शब्दों में बता सकते हैं कि किसी काम को अच्छी तरह से कैसे किया जाए, परंतु हमने जो कहा वह आवश्यक नहीं है कि वह सही हो। अय्यूब की पुस्तक 4 अध्याय उसके 10 और 11 पद में लिखा है, सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बलवान सिंह भी मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तीतर बीतर हो जाते हैं। वह कह रहा है कि बुराई का बीज बोने वाले बुराई को ही काटेंगे। वे दांत टूटे जवान सिंह और शिकार करने में असमर्थ बूढ़े सिंहों की नाई नाश हो जाएंगे। अब एलीपज कहेगा कि यह उसने दर्शन में देखा है। वह अपना दर्शन सुनाकर वास्तव में आपके रोंगटे खड़े कर देता है। अय्यूब 4 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भनक मेरे कान में पड़ी, निकट आ और कान लगाकर सुन, चूकना मत। अय्यूब 4 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं, रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में होता है, मुझे ऐसे थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या देखते हैं कि क्या यह रहस्यमय नहीं लगता है? क्या यह खून सुखाने वाली बात नहीं है? उसका दर्शन रात के अंधकार में था। आगे पढ़ते हैं अय्यूब 4 उसके 15 और 16 पद में, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा। एलीपज की कहानी कैसी डरावनी है। उसकी बात ऐसी है जैसी किसी ने कभी नहीं सुनी। यह बात कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि यह उसका दर्शन था। अंधकार में एक आत्मा उसके पास से निकली। उसने क्या कहा? अय्यूब 4 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? मेरे प्रियो, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं तो निराश हूं। मैं सोचता था कि ऐसा दर्शन पाने वाला मनुष्य ऐसी दुर्बोध बात कहेगा जिसे हम में से किसी ने कभी नहीं सुनी। यह एक नई बात नहीं है। मेरे विचार में उसने कुछ आवश्यकता से अधिक परिश्रम किया और एक छोटी सी बात बोला, जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वह पीड़ा में है और आप सोचेंगे कि वह किसी महान सत्य को जन्म देगा। वह कहता है, क्या एक नाश्वर मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? कदापि नहीं। यह सच सभी जानते हैं और हमें किसी भयानक दर्शन की आवश्यकता भी नहीं है। मेरे विचार में ऐसी घिसी पिटी और स्पष्ट बात के लिए किसी को रात की नींद गंवाने की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ वास्तव में दुर्बोध बात नहीं है, परंतु इसे अनुभव कहा जाता है। आज अनेक जन अनुभव की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं सेवानिवृत्त होने के कारण इसी कठिन परिस्थिति में हूँ, क्योंकि सेवानिवृत्त पास्टर परामर्श दे देकर सिर दर्द बन जाते हैं, विशेष करके युवा प्रचारकों को। वह आगे कहता है, मुझे स्मरण है जब मैं युवा था तब सेवानिवृत्त पास्टर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते थे, हे पुत्र, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। सच तो यह है कि उन्होंने स्वयं वैसा नहीं किया था। मैं आज अपने आप को भी वैसा ही करता पाता हूँ। मेरे प्रियो, आज ही सुबह मेरी भेंट एक युवक से हुई जो कलिसिया में पद का प्रत्याशी था। इससे पूर्व कि मुझे बोध हो कि मैं क्या कर रहा था, मैंने अपने आप को उससे परामर्श देते सुना और वहीं वार्तालाप का अंत भी किया। अनुभव की वाणी में खतरा भी है। क्या मैं कह सकता हूँ कि एलीपज अय्यूब के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुआ था? मैं आपसे यह नहीं कहता कि एलीपज और उसके साथी दुर्बोध अद्भुत सत्य का उल्लेख नहीं कर रहे थे, परंतु सच तो यह है कि वे अय्यूब की सहायक या सहायता नहीं कर रहे थे। अय्यूब 4 उसके 18 और 19 पद में लिखा हुआ है, देख वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी की डाली गई है और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी मूर्खता का काम कर बैठते हैं, तो हम जो मिट्टी के घरों में रहते हैं कैसे महामूर्ख होंगे? हमारी देह की इसके अधिक अच्छी व्याख्या और क्या हो सकती है? यहाँ हमारी देह को मिट्टी का घर कहा गया है और पौलुस दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 में कहता है कि हमारी देह तंबू अर्थात मंडप है, एक अत्यधिक दुर्बल और भंगुर तंबू जो हवा से उड़ जाएगा। हम मिट्टी के घरों में रहते हैं जो कभी भी धंस कर गिर सकते हैं। अय्यूब 4 अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं, वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। यदि उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर कट जाती तो क्या वे बिना बुद्धि के ही मर ना जाते? ध्यान दीजिए, हमारी देह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो और बलवंत क्यों ना हो, वे अकाल्पनिक ही हैं। एलीपज सत्य का उल्लेख कर रहा था जो इतिहास में इतने प्राचीन समय की है और ऐसा असाधारण है, परंतु अय्यूब के लिए वह किसी काम की नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऐसे सत्य का उल्लेख किया जाना आसान है, परंतु जीवन में वह प्रासंगिक हो या कार्यकारी हो यह संभव नहीं। हमें अपने जीवन की आवश्यकता में संबंधित सत्य की आवश्यकता होती है, हर किसी सत्य की नहीं। अय्यूब के मित्र सच्चाई प्रकट करेंगे और कुछ अति उत्तम बातें भी कहेंगे। मुझे अय्यूब की पुस्तक का यह भाग पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको भी यह अच्छा लगता होगा, परंतु अय्यूब के लिए इनका कोई अर्थ नहीं था। मन में आता है कि उनसे कहा जाए, बस अब और नहीं, क्योंकि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उससे अय्यूब को कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा है। मेरे मित्रों, हम आगे देखेंगे अय्यूब 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, पुकार कर देख क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा, और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक वरन महत्वपूर्ण है, तू किसकी ओर फिरेगा। मुझे खेद है संतों ने आपको सहायता प्राप्त नहीं दी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम और इसहाक इस समय मर चुके थे, याकूब शायद जीवित था। न तो अब्राहम से सहायता मिल सकती थी न ही इसहाक से। पूर्व काल के संत जो मर गए उनमें से कोई भी सहायता करने योग्य नहीं है। आप किस संत से सहायता की आशा करेंगे? अय्यूब 5 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। मैंने मूढ़ को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। ध्यान दीजिए, उसने मूर्ख और दुष्ट को फूलते फलते देखा था, परंतु अंत में उनका नाश हो गया। प्रसंगवश यह सच ही है। दाऊद भी दुष्टों की समृद्धि से व्याकुल होकर लिखता है भजन संहिता 37 उसके 35 और 36 में, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। दाऊद की चिंता का विषय था कि दुष्ट क्यों फूलता फलता है, धर्मी जन क्यों नहीं। उसने अंत में यही देखा कि परमेश्वर अंततः दुष्ट का सर्वनाश कर देता है। हिटलर का समय बहुत लंबा दिखाई दिया, परंतु इसलिए कि हम उसमें वास करते थे, अन्यथा वह तो कुछ ही वर्ष का था कि परमेश्वर ने उसे नष्ट कर दिया। परमेश्वर आज दुष्टों का नाश क्यों नहीं कर रहा है? मेरे मित्रों, परमेश्वर अधीर नहीं है, वह अपने समय में दुष्टों का अंत करेगा। उसके पास तो संपूर्ण समय है, जिसे हम अनंत काल कहते हैं। एलीपज अय्यूब को उन दुष्टों में गिन रहा था जो खूब फूले फले और अंत में नाश हुए। मेरे मित्रों, यहाँ पर एक व्यक्ति को सांत्वना देने के स्थान पर इस पर छींटा कच्छी की जा रही है। कई बार हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं, और आज मेरे लिए और आपके लिए इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम दुखित व्यक्ति को किस प्रकार से सांत्वना दें, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, यह बहुत ही आवश्यक है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आपने अवश्य ही अय्यूब के जीवन से नई बातों को सीखा है। आज के अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।